الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج منگل کا دن ہے، اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر افاق کتاب مثنوی مولانا روم کی تشریح ہوتی ہے، اور چونکہ یہ حکایات کے بنیاد پر چلتی ہے تو اس میں حکایات بیان کیے جاتے ہیں. بعض دفعہ حکایات اصلی ہوتے ہیں، بعض فرضی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں جو مفید مضامین اس سے برآمد ہوتے ہیں وہی ہمارا مقصود ہوتا ہے. تو وہی مل جو وقت اصلی قصہ ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے جو جیسے فرضی واقعہ ہو. وہی کردن حق تعالیٰ بموسیٰ علیہ السلام کہ من ترا دوست مدارم. حق جل شانو کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجنا کہ میں تجھے دوست رکھتا ہوں. گفت موسیٰ رب وحی دل خدا کائے گزیدہ دوست میدارم ترا. گفت جی خاصلت بود اے ذوالکرام مجھے بھی آتا ماں افزو کنم. گفت چون طفل و پیش والدہ وقت کا روشتس ہم بروئی زدا. خود ندانت کے جزو دیار ہست ہم از و محمور ہم از اوست مست. مادرش گرسلیے بروے زند ہم ب مادر آئے دو بروے تند. اس کسے یاری نہ خواہد غیر او اوس جملہ خیر او شر او. خاطر تو ہم ز مادر خیر و شر التفانش نیستر با جائے دیگر. غیر من پیش تجوں سنگست کو لکلو گر سبیو گر جواو گر شیو. ہم چنا کی ایا کا نعبد در حنین از بلا از غیر تو لا نستعین. ہست ایا کا نعبد حسراہ در لغت اس پی رف اوریا. ہست ایا کا نستعین بمبہر حسر 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 کردہ استعانت راو قصر. کہ عبادت مر تو نہ آری مبس تھما یاری ہم استو داری مبس. حق جل شانو کا موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجنا کہ میں تجھے دوست رکھتا ہوں. حق تعالیٰ جل شان نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے برگزید نبی، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک کریم وہ کون سی عادت ہے جو باعث لطف و کرم ہوئی ہے تاکہ میں اس کو اور زیادہ کر دوں؟ تاکہ سبحان و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری میرے سامنے ایسی حالت ہے جیسے بچے کی ماں کے سامنے جو غصہ کے وقت بھی اسے لپٹا رہتا ہے. وہ نہیں جاتا کہ گھر میں بھی دوسرے انسان ہیں، بلکہ وہ اسی سے مخمور و مست ہوتا ہے. چنانچہ ماں اگر اسے تپڑ مارتی ہے تو اسی کی طرف چلتا اور لپٹتا ہے، اور اس کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا. اس کے حق میں بری ہے تو بلی ہے تو وہ ہے، عرضے کے سب کچھ وہی ہے. اس طرح تمہاری حالت ہے، ہماری طرف اگر کوئی ناگواری لاحق ہوتی ہے تو بھی تمہاری طبیعت ہم کو چھوڑ کر کسی اور طرف ملتفت نہیں ہوتی، اور اگر خوشی پیش آئے تب بھی ہمارے طرف ہی ملتفت ہوتی ہے. اور ہمارے سوا جو کچھ بھی ہے، خواہ بچہ ہو یا جوان یا بڈھا، سب مثل ڈیلے اور پتھر کے ہیں. اے موسیٰ، تو غم میں بھی یہ کہتا ہے اے خدا ہم تیری پرستش کرتے ہیں، اور بلا میں بھی یہ کہتا ہے کہ ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. یہ مولانا فرماتے کہ دوستو، جس طرح تم یا کا نعبد کی ہدایت کی گئی ہے، یوں ہی کیا یا کنستعین بھی بتلایا گیا ہے. پر جس طرح تم کہتے ہو کہ ہم گریزاری کی حالت میں صرف آپ ہی کی بات کرتے ہیں، یوں ہی یہ بھی کہو کہ بلاؤں میں آپ کے سوا کسی سے امداد بھی طلب نہیں کرتے. بچہ جس طرح خوشی و غمی، راحت و سرور، دکھ و درد کا عالم میں سوائے ماں کے کسی کو نہ جانا، تم کو بھی خدا وحد الرشوں سے اس کے در محبت اور شغفت کو ہونی چاہیے، شغف ہونا چاہیے. کماکیل ہر چیز دوست ہے رسید میں کس. عربی زبان میں یا کا نعبد کا حسر اس لیے تاکہ عبادت میں ریا کا شائبہ بھی نہ ہو. یا کا نستعین میں بھی حسر اس لیے تاکہ مدد بھی صرف اسی سے طلب کیا جائے. بس عبادت تیری ہی کرتے ہیں، اے کریم تجھ ہی سے مدد لیتے ہیں. تو جس طرح عربی زبان کے علماء معنی و بیان کے اصطلاح میں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مخصوص کرنے کو کہتے ہیں، مثلا صفت کو موصوف کے ساتھ یا موصوف کو صفت کے ساتھ، اور یا کا نعبد و یا کا نستعین میں چونکہ یا کا مفعول ہے اس لیے فعل پر مقدر وقت حسر کا فائدہ دیتا ہے. یعنی ہماری عبادت تیرے لیے مخصوص ہے، اور ہماری مدد طلبی بھی تجھ ہی سے مخصوص ہے. عبادت اور مدد دونوں کی چہک جل شانوں کے ساتھ مخصوص کرنا چاہیے. ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ استعانت بالغیر بے نشرح سر استعانت فی الحق کی منافی ہے. مثلا کوئی شخص کسی امیر سے 10 روپے مانگے اور کہے کہ ہمارے خزانے سے لے لو, تو اس حکم کے بنا پر خزانچی سے مانگے تو یہ درحقیقت اس امیر ہی سے مانگنا ہے, نہ کہ خزانچی سے. بس اسباب عادیہ سے استمداد کے وقت ہی ملحوظ رہے کہ میں بذن حق سبحان تعالیٰ ان سے مدد لے رہا ہوں, تو استمداد فی الحق سبحانہ کی ہے نہ کہ غیر سے. واللہ عالم. چونکہ اس کا جو ترجمہ و تشریح ہے یہ بھی علماء نے کیے, اس وجہ سے علمی نکات درمیان درمیان میں ایسے پیش آتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کو اس سے کسی سے شبہ ہو تو شبہ کا ازالہ بھی ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اصل میں یہاں مقصود کیا ہے, اس واقعے سے مقصود کیا ہے؟ اس واقعے سے مقصود یہ ہے کہ ہمارا اللہ جل شانہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ عام لوگوں کے ساتھ تعلق کی طرح نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارے تمام حاجات وابستہ ہیں. کوئی بھی حاجت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو پورا کر سکتا ہو. یہاں پر بھی وہی نقطہ آ جائے گا جو مولانا نے بعد میں بتایا ہے کہ کوئی اور بھی اگر پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے. کوئی اور بھی اگر کسی کا کوئی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی اصل میں من جانب اللہ ہی ہوتا ہے, لہذا وہ کام بھی اللہ ہی کرتا ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے بعض دوستوں سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کو محبت ہے الحمدللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ تمہیں مجھ میرے ساتھ محبت اپنی والدین سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے, بلکہ اپنے آپ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. یہ بات تو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ذاتی بنیاد پہ نہیں بلکہ من جانب اللہ اس کو, میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے. اب ہم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جو وجوہات ہیں, یعنی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر بہت مہربان ہیں, بہت زیادہ امت کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں, برداشتیں کی ہیں, گڑگڑائے ہیں, روئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مانگا ہے معراج شریف کے موقع پر بھی اور بھی بہت ساری جگہوں پہ. تو اب ایسی ہستی کے ساتھ محبت نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ یعنی اس کو ہر وقت امت ہی یاد تھی, یہاں تک کہ معراج شریف کے موقع پر جب اللہ پاک نے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا لائے ہو دنیا سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات, تو اللہ کی طرف سے آیا السلام علیکا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہہ سکتے وعلیکم السلام, کیونکہ اللہ پاک خود سلام ہے, تو وہ سلام بھی اللہ کے منشا کے مطابق اپنے اوپر لے لیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اس میں اپنے امت کو شریک کر دیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ عباد الصالحین کے لیے تو اسپیشل لفظ لے آئے وعلی عباد اللہ الصالحین, اور السلام علینا میں باقی ساری امت کو شامل کر دیا. السلام علینا میں سارا امت کو شامل کر دیا. अब जितने ही ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत करते और हमारे लिए इतने ज़्यादा कोशिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ना किया जाए तो क्या किया जाए। लेकिन एक अहम बात है, वो जो बात है वो ये है कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे साथ जो मोहब्बत है, ये किस वजह से है? ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पैदा फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सिफात अता फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हमारे लिए मोहब्बत रखी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ इतना मुतवज्जेह फरमाया, ये सारा कुछ अल्लाह ने किया है। तो असल मोहब्बत किसको है हमारे साथ? अरे अल्लाह, अल्लाह का है। आप सज़म फरमाते इन्नम अनल कासमु वल्लाहु युती, बेशक मैं तकसीम करने वालों अल्लाह पाक अता फरमाने वाले। तो अब आप सज़म के जरिए से हमें जो कुछ भी मिल रहा है अता तो अल्लाह ताला ही कर रहे हैं। खुद अल्लाह आप सल्लम फरमा रहे हैं इन्नमा अनल कासिमु, मैं तो तकसीम करने वाला हूँ, वल्लाहु युती, और अल्लाह पाक अता फरमाने वाले हैं। तो जो आप सल्लम भी दे रहे हैं वो भी अल्लाह ताला दे रहे हैं। इस वजह सूरह फातिहा की इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। अगर तारीफ किसी की जा सकती है तो अल्लाह जल्ल शान है। असल तारीफ अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह जल शानु ही ने सारे काबिल तारीफ लोगों को पैदा किया है, सारे काबिल तारीफ चीज़ों को पैदा फरमाया है। लिहाजा हम जिसकी भी तारीफ करेंगे वो तारीफ जाएगी उस तरफ ही। जो भी हमें देगा वो असल में अल्लाह की तरफ से देगा, जो भी हमारे काम आएगा वो असल में अल्लाह ताला की तरफ से हमारा काम आएगा। तो जब ये सारी बातें हमें मालूम हो जाए तो फिर अब किसकी इबादत की जाए? अल्लाह ही की। और किससे मांगा जाए? अल्लाह ही से। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ और बहुत अहम मिसाल है कि अगर कोई शख्स अपने मुलाजिमीन से कहे कि अभी जो शख्स भी आएगा तो उनको एक एक पैकेट देते जाना अफ्तारी का, अगर रमज़ान शरीफ। एक आदमी कहता है कि हज़रत मैं आयलदार हूँ और एक पैकेट से मेरा गुजारा नहीं होगा, तो मुझे दो पैकेट दे दो। तो उसे कहता है कि मैं तो आपको 50 देने के लिए तैयार हूँ, असल में तो ये उनका है, आप उनसे पूछे तो अगर 50 का कह दे मैं आपको 50 दे दूँ, मैं तो तकसीम करने वाला हूँ, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं दे सकता। अब यही तकसीम करने वाले अता करने वाले में फर्क है। तो जो अता करने वाले तो मांगा किससे जाता है? अता करने वाले से। और जाहिरन दिया जा रहा होता है तकसीम करने वाले की तरफ से। यही असल में बुनियादी बात है जिस पर लोग समझते नहीं है और जगह जगह परेशानियों मुबतला होते। मैं अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाता हूँ और हजरत से मांगता हूँ तो क्या इस पर हजरत खुश होंगे? जिनने पूरी जिंदगी या का नाब दो या का नस्तीन पढ़ा है और दिल से पढ़ा है, हमारे तरह नहीं पढ़ा। हाँ जी, तो क्या हम उसकी खिलाफ वर्जी करके उनको खुश कर सकते हैं? तो मांगे तो अल्लाह ताला से जाता है और इबादत भी अल्लाह ताला की जाती है। यही असल में बुनियादी बात है। अगर किसी की ये चीज समझ में आ जाए तो उसके लिए दीन बहुत आसान है। अद्दीन युसरुन, उसके लिए दीन बहुत आसान है। लेकिन अगर हमने अपने अंदर कोई पीचीदगी पैदा की है समझ के कसूर की वजह से, फिर उसका इलाज बड़ा मुश्किल है। फिर इसका इलाज बहुत मुश्किल है। टेढ़ बहुत ही खतरनाक चीज है, इसलिए हम बाकायदा अल्लाह ताला से मांगते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादे हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ए रब हमारे, तो हमारे दिलों के अंदर कजी न पैदा फरमा बाद इसके कि तूने हमें हिदायत अता फरमाई है, यानी सच्चे दीन में हमें दाखिल फरमाया है, तो अब कजी तुम्हारे दिल में आके कहीं हम इस दीन से निकल न जाए। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और अपनी तरफ से बगैर किसी इस्तेहका के रहमत नसीब फरमा दे। वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू तो बगैर इस्तेहका के देता है, कोई भी इस पर पूरा नहीं उतरता लेकिन तू देता है। हाँ जी, तो ये जो बात है कि ये बात जो तकसीम करने वाला और अथाह करने वाला, ये बात अगर समझ में आ जाए तो सारी परेशानी दूर हो जाए हमारी। तो अब यहाँ पर अल्लाह पाक गोया कि मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह वो मेरी कौन सी आदत है जो इतनी ज़्यादा उल्फत मेरी तरफ है, उल्तफात मेरी तरफ है, जब मुझे पता चलेगा तो मैं उसको और ज़्यादा कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये अजीब वो मलशान की बात थी कि चूँकि कलीमुल्लाह थे, आपसे अल्लाह ताला उनसे बात फरमाते थे और आशिक भी थे अल्लाह ताला के, तो आशिक तो चाहता है कि उसके साथ अपना वो बातें करता रहे, वो तो बातों का बहाना बनाता है। हाँ, वो तो बातों के लिए बहाना बनाता है। तो अल्लाह पाक ने उसे पूछा, मा तिलक बियमी ने कहा, मूसा ये तेरे हाथ में क्या है? मा तिलक बियमी ने कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? अब इसका जवाब ये तो मेरे हाथ में सा है, बात इतनी सी बात। लेकिन मूसा ऐसा मिस्र नहीं कहते कि ये मेरी आसा है और इसके साथ मैं टेक लगाता हूँ, मैं इसका ये करता हूँ ये करता हूँ, उसके साथ मैं और कोई काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है, इसकी वजह यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को मज़ा आ रहा था जब अल्लाह पाक बात फरमा रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को मज़ा आ रहा था, तो इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम बात बढ़ा रहे थे। हाँ जी, हक सुभान अल्लाह फरमाया कि तुम्हारी मेरे सामने ऐसी हालत है जैसे बच्चे की माँ के सामने जो गुस्सा के वक़्त भी उसे लिपटा रहता है, यानी माँ अगर गुस्सा भी हो उस वक़्त भी बच्चा उसकी तरफ ही जाता है। मौलाना तक़ी उस्मानी साहब बरकातों में एक दफ़ा बयान फरमा रहे ख़ालिब ख़त्म बुखारी, वो दरस बुखारी का था, मैं इंटरनेट पर मैंने सुना, तो हज़रत फरमा रहे थे कि मेरी नवासी थी, मैं घर में दाखिल हो गई तो मेरी नवासी का जो बेटा है छोटा जा रहा है बच्चा, तो उस वो मेरे नवासी किसी वजह से उसको मार रही थी। तो बच्चा रो रहा था लेकिन फिर भी माँ से दूर नहीं जा रहा था बल्कि माँ की तरफ ही जा रहा था, माँ की तरफ ही जा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि माँ ऐसी हस्ती है कि अगर वो मारे भी तो बच्चा किधर जाए। और तो ये वाकया बयान किए मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम ने, और इसी वाक्य को हज़रत सूफ़ी इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी, ये असल में ये हज़रात जो होते ना ये आरिफीन होते हैं, तो ये आम वाक्य को भी बहुत अहम अंदाज में बहुत प्यारे अंदाज में मतलब बता देते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते हैं मतलूबा। तो हज़रत ने एक छोटा सा रिसाला लिखा है, उसका नाम है मोहब्बत के इशारे। हमारे पास है मोहब्बत के इशारे? नहीं है। मोहब्बत के इशारे छोटी सी रिसाला है, हजरत ने इसमें एक तमसील बयान की कि एक बच्चा जिद में आ गया, माँ के साथ लड़ पड़ा और माँ को भी गुस्सा आया, तो माँ ने उसको कहा, जा निकल जा बदबख्त, जा जाना चाहता है तू चला जा, तो वो भी गुस्सा हो गया, कहते अच्छा ठीक है मैं अब घर में नहीं आऊँगा। तो वो जो है ना वो दरवाज़ा से बाहर निकला, तो मैंने उसके पीछे दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अब वो बच्चा रोता हुआ जा रहा है, कुछ देर के बाद उसको ख्याल आया कि मैं किधर जा रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा और मेरी जगह और है कौन सी, कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे खिलाएगा, कौन मुझे पिलाएगा, और तो कोई उसको नजर, क्यों बच्चे की नज़र भी महदूद होती है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर तो चलो वो बागी हो के पता नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वही कर, लेकिन छोटा बच्चा और क्या कर सकते हैं। हमारे साथियों में से एक साथी है माशाल्लाह, बड़े करीबी साथी, वो बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ लड़ा था। उसने मुझे अपना वाक्य बयान किया कि मैं लाहौर पहुंच गया, इधर रावलपिंडी के इलाके था, लाहौर पहुंच गया और वहाँ दाता साहब के मज़ार पे चला गया, और उधर जो है ना मतलब है कि ज़ाहिर है वहाँ खाने पीने को तो मिल जाता है, लोग वो खैरात वगैरह करते हैं। तो कहते मैं उधर था, तो कहते एक आदमी आया, तो उसने मुझे कहा कि काम करते हो, काम करोगे? तो मैंने कहा हाँ करूँगा। तो कहते मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर बात बात करें। इतने में एक आदमी मेरे करीब आया, मुझे कहते लगते हुए तू भागे हुए आए हो, उसका अंदाज़ा हुआ, लगता है तू भागे हुए है, तो ये है कि उस इस तरह करके तू सीधा कर चला जा, वन यहाँ मामला बड़ा ख़तरनाक है, कोई तुझे काम के बहाने ले जाएगा और फिर या तुझे बेच देगा या पता नहीं अपना कोई मतलब बिगाड़ कैंप में ले जाएगा, पता नहीं आपके साथ क्या क्या करेगा, फिर आपको कौन होगा पूछने वाला, तो यहाँ से जाए जैसे भी हो माफ़ी तलाफी मांगो और मतलब घर पहुँच जाओ। तो कहते मेरे पास पैसे भी, उसने मुझे पैसे दे देंगे, जाओ ये पैसे लो और वापस घर चले जाओ। तो कहते उसने मुझे फिर पैसे दे और मैं चला आया अपने घर वापस आ गया। तो इस तरह यानी थोड़ा सा बड़ा था तो उसको ये ख्याल था कि मैं कर लूँगा, लेकिन अच्छा हुआ कि उसको कोई ऐसा ही आदमी टकरा, वरना आदमी आया था लेने के लिए तो आया था। तो खैर ऐसा है कि वो जो छोटा बच्चा है तहसील के तौर पे बता रहे हैं कि वो वापस आ गया, जब वापस आया तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। तो फिर ये रो रहा था और वो सीढ़ियों के ऊपर सर रखा, और चूँकि बच्चा मासूम होता है तो उसको नींद आ गई, तो ऐसे रोते रोते वो जाना सो गया था। इतने माँ को ख्याल हुआ कि पता नहीं बच्चा किधर गया, माँ भी तो माँ थी, बाहर आया तो बच्चा जो है ना मतलब सीढ़ियों के ऊपर सर रख के सोए हुआ है, और कामों को पे मतलब जो है ना वो रफ्तार पे वो आंसू की निशानियाँ मौजूद हैं। तो माँ को प्यार आ गया, उसने उसे उठा लिया अपने सीने से लगा दिया और कहा कि बेटा तुझे क्या पता कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हाँ जी, तो हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ये बात फरमाई कि हम अल्लाह पाक से कहाँ मांगेंगे, अगर भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, आना तो फिर भी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ है, अगर बचना है तो कोई और हमारा वास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है, हम कहाँ भागेंगे। तो इस वजह से चाहिए हमें कि पहले ही से हम अल्लाह पाक की तरफ ही आए, फिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो। तो ये जो है ना ये जो बात है कि हजरत ने ऐसे मतलब इस्तेमाल करके फरमाया कि हम अल्लाह के साथ अपना राव रस्म बढ़ाएं और हर हालत में अल्लाह की तरफ आए, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि जो भी हालात हमारे ऊपर आते हैं तो वो हालात हमें अल्लाह से दूर न करें बल्कि अल्लाह के करीब करें। जो भी हालात हमारे ऊपर आए, अगर वो हालात अच्छे हैं तो शुक्र करके अल्लाह के करीब हो जाएं, और अगर वो हालात हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं है, सख्त है, मुश्किलात है, तो भी फिर सब्र के जरिए से अल्लाह ताला के हम करीब हो जाएं, क्योंकि दोनों ये चीज़ें जो है ना अल्लाह के करीब करने वाले, इन अल्लाह मा सबिरीन, بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واللہ یحب الشاکرین, اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا. اب بات یہ ہے کہ دونوں طرح اللہ ہی کا قرب ہے, شکر کے ذریعے سے بھی قرب ہے اور صبر کے ذریعے سے بھی قرب ہے. لہذا ہمیں کوئی بھی حالت ہو, اس حالت میں ہم اللہ پاک کی طرف ہی بھاگے. ہاں جی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت دور اندیش تھے, تو ان کے فکر آتا کہ مجھے نہیں معلوم کہ صبر کی اونٹنی پر میرے لیے زیادہ بیٹھنا افضل ہے, بہتر ہے, یا شکر کی اونٹنی پر بیٹھنا میرے لیے بہت افضل ہے, بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ دونوں اللہ پاک سے دلوانے والی ہے, دونوں اللہ تعالیٰ سے دلوانے والی ہے. تو یہ جو عارفین ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اچھے ہوتے ہیں, وہ ہر حال میں اچھے ہوتے ہیں, ان کی ہر حال میں جیت ہوتی ہے. کیوں؟ وہ حالات کو صحیح طور پہ جانتے ہوتے ہیں, اور ان حالات کے اندر جو امر الہی ہوتا ہے وہ بھی ان کو پتہ ہوتا ہے. لہذا اسی حال کے مطابق جو عمل کرتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قلندر کی بات کی ہے, قلندر کی طریق, قلندر ایک حضرت کا واعظ ہے, اس میں حضرت نے قلندر کی تعریف یہ کی ہے, قلندر کے ظاہری نفلی اعمال اتنے نہیں ہوتے, ظاہری نفلی اعمال, نفلی اعمال یہ نہیں کہ فرض واجب, فرض واجب وہ کرتے ہیں, نفلی اعمال, لیکن باطنی اعمال اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا لوگ اس کو نہیں جانتے, نہیں پہچانتے, لیکن اللہ پاک کے سامنے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے, کیونکہ نفلی اعمال ان کے جو باطنی ہوتے بہت زیادہ, مثلا صبر اور شکر. ہاں جی, یہ ہر حالت میں وہ اللہ پاک کی طرف مجھے نمبر ہوتا ہے. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ پاک یہ نصیب فرما دے, یہ حالت نصیب فرما دے کہ ہر حالت میں اللہ ہی کی طرف جانا والا ہو, تو بس پھر اس کی کامیابی الحمدللہ پاکی بات. تو یہاں پر بھی وہی بات چل رہی ہے. اللہ اکبر, وہ نہیں جانتا کہ گھر میں بھی دوسرے انسان ہیں, بلکہ اسی سے مخمور مست ہوتا ہے, چنانچہ ماں اگر اسے تپڑ بھی مارتے تو اسی کی طرف ہی چلتا ہے اور لپٹتا ہے, اور اس کے سوا کسی اور سے مدد نہیں چاہتا. اس کے حق میں بری ہے تو وہ بلی ہے, تو وہ ہے عرض کی سب کچھ وہی ہے. اس طرح تمہاری حالت ہے, ہماری طرف اگر کوئی ناگواری کی حالت بھی آ جاتی تو بھی تمہاری طبیعت ہم کو چھوڑ کر کسی اور طرف ملتفت نہیں ہوتی, اور اگر خوشی پیش آتی ہے تب بھی ہماری طرف ملتفت ہوتی. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے, بڑا پیارا قول ہے, انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہاں جی, تیری طرف سے جو بھی اب بات آئی ہے نا میرے طرف, میں اس کا فقیر محتاج ہوں, میں لینا چاہتا ہوں. بڑے عجیب الفاظ ہیں. ہاں جی, شاید حضرت نے اسی سے سارا نکالا ہو, ان نیلمانزت لئے من خیر فقیر. فقیر کا لفظ یہاں سے آیا. ہاں, فقیر کا لفظ یہی ہے جو اللہ کا محتاج ہو, کسی اور کا نہیں, جو اللہ کا محتاج ہو. اور حضرت تانوی حسین نے اس کو قلندر فرمایا ہے, تقریباً ایک ہی جسم کی بات ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے, پانی پانی کر گئی قلندر کی ایک بات, تو جو کہا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. ہاں جی, یعنی قلندر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف جھک نہیں سکتا, وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے, وہ صرف اللہ پاک سے لیتا ہے, کسی اور سے نہیں لیتا. ہاں جی, وہ اللہ پاک ہی سے لیتا ہے. اگر وہ تشکیل اس کی ہو جائے کسی اور طرف, تو وہ جس طرف اس کی تشکیل ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق جتنا ممنون ہونا چاہیے اتنا ممنون ہوتا ہے, ورنہ اصل میں اللہ ہی کا ممنون ہوتا ہے. جتنا ممنون اس کے یعنی مطلب علم میں اللہ کے نزدیک ہونا چاہیے اتنا وہ ہوتا ہے, لیکن اصل میں अल्लाह ही का ममनून होता है, उनको वास्ते परेशान नहीं कर सकते, वास्ते परेशान नहीं। हाँ वास्ते उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मतलब जो है ना वो यानी मुनव्वर करते, लेकिन परेशान नहीं करते, क्योंकि उनके तमाम वास्तों के अंदर वही नजर आता है जहां से हर खैर आता है, उसको नजर वही आता है। लिहाजा वो वास्तों का मोतरफ जरूर होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया हल जजा अल एहसान अल एहसान, लेकिन ये है कि वो उन वास्तों में उलझता नहीं है, बल्कि इन वास्तों के जरिए से अपनी रब को पहचानता है, अपनी रब को वो पहचानता है। या अल्लाह, इतनी कुरान पाक में इतनी जबरदस्त बातें हैं, लेकिन इस रुख से लोग सोचते नहीं हैं, वरना ऐसे अजीब अजीब मतलब वो उसमें अंदाज में अल्लाह पाक ने ये बातें फरमाई है। बस अल्लाह पाक फरमाते इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि तमाम वास्तों से गुजर कर मैं पहचानता हूँ कि मेरा रब तो अल्लाह है, किसी वास्ते पे मेरी नज़र टेरती नहीं है। किसी वास्ते पे मेरे लिए तमाम वास्ते ट्रांसपेरेंट है, वो मेरे लिए हिजाब नहीं बनते, असल में लोगों के लिए हिजाब बनते हैं, लोगों के लिए वास्ते हिजाब बनते हैं, लिहाजा वो महजूब बन जाते हैं। और जो आरिफ होता है उसके लिए वास्ते हिजाब नहीं बनते, और वो उन तमाम वास्तों के अंदर वो जो असल मुसब्बिबे आला है वो जानता है उसको कि ये तो फलां जरिए से मिल रहा है। हाँ जी, उनको आरिफीन गिर। तो अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाह, ये असल में मारिफत की तरफ इशारा है। लोग इसको सिर्फ कौल समझते हैं, कहते तो सभी हमारा रब अल्लाह है, कौन है जो नहीं कहता? वैसे कहने तो को तो सब कहते हैं, लेकिन ये कहना कौन सा है? इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर कायम रहे, उसका कौल फेल अमल किरदार सारा उस पर दलालत करता है, उस पर कायम रहे। ये जो लोग होते हैं उनके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشر بالجنة التي كنتم توعدون, कि जो ऐसे लोग होंगे उनके ऊपर मलाइका उनसे मुलाकात करेंगे आखिर में मौत के वक़्त, उनसे कहेंगे कोई खौफ न करो, कोई गम न करो। हाँ जी, उस जन्नत का वादा जिसके अब साथ जिसके तुम्हारे साथ था उसकी बशारत हासिल कर लो। हाँ जी, हम तुम्हारे साथ इधर ही थे और अभी साथ ही जा रहे हैं, और हर जो जन्नत तुम्हें मिलेगी उस जन्नत के अंदर जो तुम्हारे जी चाहेगा वो भी तुझे मिलेगा, और जो तुम अपने मुंह से मांगोगे वो भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम की वो मेहमान नवाजी होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो तमाम वास्तों से गुजर के जो रब्बुल आलमीन को पाना है, जिनको ये मारिफत हासिल होती है उनको अल्लाह पाक ये नेमत नसीब फरमाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे सिवा जो कुछ भी है, खा बच्चा हो या जवान या बूढ़ा, सब मिसल डीले और पत्थर के हैं। ए मूसा, तू हम में भी ये कहता है, ए खुदा हम तेरी ही परस्तिश करते हैं, और बला और मुसीबत में भी कहते हैं कम तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगते। अरबी जुबान में यह का नाबदो का हसर इसलिए है ताकि इबादत में रिया का शुबा भी ना रहे, रिया का शायबा भी ना हो। بریا کرستین میں بھی حصر اس لیے تاکہ صرف اسی سے مدد مانگی جائے. پس عبادت تیری کرتے ہیں کریم, تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں. اس میں حضرت نے فرمایا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا, بلکہ اللہ پاک کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے, لیکن اسباب میں الجھنا نہیں ہے. اللہ اسباب میں الجھنا نہیں ہے, بلکہ اسباب کے اندر مسبب الاسباب کو پانا ہے اور اس پر نظر رکھنی. ہاں جی, ایک منٹ میں ذرا, شاید پیغام محبت ہے, پیغام محبت. جی, اس کے لگا وہ ملے لگا دینا اس کا.
کنیکٹڈ.
اس میں یہ بات سمجھائی گئی,
نہ ہوں منزلوں کی تلاش میں, نہ ہوں منزلوں کی تلاش میں, نہ ہی دل جو کی ہے طلب مجھے, نہ ہوں منزلوں کی تلاش میں, نہیں دل جو کی ہے طلب مجھے, بس یہی تو دل کی ہے آرزو کہ اب اپنا بنا ہی لے رب مجھے.
یہاں پر بھی واسطوں کی بات ہے, منزل بھی ایک واسطہ ہے. ہاں جی, تو درجات بھی واسطہ ہے, تو اس میں بھی پھنسنا نہیں ہے. مطلب جو درجوں میں پھنس گیا, جو منزلوں میں پھنس گیا, تو وہ بھی رہ گیا. ہاں, اس کو سیڑھیاں سمجھ لیں تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو اپنا مقصد سمجھ لینا یہ محرومی ہے اور محجوبی ہے.
یہ دیوانگی ہی کی की तो बात है के हिजाब अब ना हो दिल में आ ये दीवानगी की तो बात है के हिजाब अब ना हो दिल में आ मेरा मांगना इसे का अजीब तर मगर क्या हुआ है ये अब।
यानी इसमें ये बात बताई गई है कि इंसान अपने इस कैफियत को कि मैं सिर्फ अल्लाह को देखूं और रास्ते में और कोई ना आए, तो यह हिजाबात की नफी है। लेकिन ये तो एक दीवानगी की कैफियत है। अल्लाह पाक ने ये जो हिजाबात बनाए हैं तो ये तो होंगे, हाँ जी, इन्हीं के ज़रिए से सारे काम करने होंगे, लेकिन जज्बा तो ये है कि हिजाबात ना हो, हाँ जी। तो खुद कह रहे हैं कि दीवानगी ही तो बात है, और मैं अब इसको मांग रहा हूँ तो कमाल की बात है, मेरा मांगना भी कोई अकल की बात नहीं है, लेकिन मुझे क्या हुआ है कि जज्बा तो मेरा यही है कि मैं तो यही कहता हूँ कि हिजाब ना हो।
मुझे नहु मंजिलों की तलाश में ना ही दर जो की है तलब मुझे मेरी खलवत तो जलवत भी उसकी हो मेरा दिलो दिमाग भी उसे का हो मेरी खलवत तो जलवत भी उसे की हो मेरा दिलो दिमाग भी उसे कहो मैं दीवाना हूँ हाँ दीवाना हूँ कहें ये कहें लोग सबे मुझे नहु मंजिलों की तलाश
ये जो इबादत है ये भी असल में इसी की इंडिकेशन होती है कि हमारा सब कुछ अल्लाह का है, हमारा सब कुछ अल्लाह का है, यानी हम अल्लाह पाक के सामने सरेंडर करते हैं, हाँ जी। ये उसकी एक अल्लाह पाक ने हमें तरीका दिया है कि इसके ज़रिए से हम इस चीज़ को मतलब मैनिफेस्ट कर लें, ताकि जो है ना मतलब ये कि हम इसका इजहार कर सकें, हाँ जी। तो इसके लिए अल्लाह पाक ने एक तरीका हमें बताया है कि इस बात का इजहार इस तरीके से करो, हाँ जी, नमाज के ज़रिए से कर लो, रोज़े के ज़रिए से कर लो, ज़कात के ज़रिए से कर लो, हज के ज़रिए से कर लो, हाँ जी, इस तरीके से मुख्तलिफ जो फैज़ हैं इस तरीके से हम इस बात का इजहार करना चाहते हैं। यानी हम हमारी जान जो है ये भी अल्लाह की है, हमारे माल भी ये भी अल्लाह पाक की है, हमारी इज्जत भी ये भी अल्लाह पाक की है, मतलब हमारी हर चीज़ अल्लाह की है, हाँ जी, कोई चीज़ भी हमारी अपनी नहीं है। तो इबादत का जो कंसेप्ट है वो असल में बुनियादी तौर पर यही है कि हम सब अल्लाह के हैं, हम सब इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के हैं, हाँ जी। तो इस बात के इजहार के लिए अल्लाह पाक ने जो इबादत, तो इया का नाबुदो, हम तेरे ही इबादत करते हैं, यानी तेरे इस तरफ ही हम आते हैं, तुझ तेरी तरफ। अब इसके बाद फिर हम अपने जो मोहताजी हैं उसका भी जिक्र करते हैं, इया का नस्ताइन, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, हाँ जी। तो अब देखो पहले वाली बात यह कि मेरे खलबत तो जलवत ये भी उसकी हो, मेरा दिल दिमाग भी इसका हो, हाँ, ऐसे लोगों को लोग दीवाने कहते हैं। तो मैं दीवाना हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर कोई मुझे दीवाना कहता है तो मुझे कोई परवाह नहीं, हाँ मैं दीवाना हूँ।
आश में नहीं दल जो की है तलब मुझे, जो सबब है उसे का है हुक्म, हाँ मैं करूँगा पूरा जरूरी है, जो सबब है उसे का है हुक्म, हाँ मैं करूंगा पूरा जरूरी है, मेरे दिल की निगाह से वो दूर हो, कभी खींचे यूं न सबब मुझे।
ये नसमाब मैं अख्तियार कर रहा हूँ उसके हुक्म से, इसको मैं पूरा करूँगा, लेकिन ये इसबाब मेरे ऊपर इतने हावी ना हो कि वो उसको बुला दे, कि उसको बुला दे, हाँ ये इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। हाँ जी, तू जो का जब गैर के आगे न तन तन तेरा नमन, मतलब ये बात ना हो कि मैं इसबाब का गुलाम बन जाऊँ। हाँ मैं इसबाब पूरा इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ने इसबाब मुकर्रर किए हैं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, लिहाजा मैं तो इसबाब पूरा करूँगा, लेकिन ये इसबाब का मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं बंदा तो अल्लाह का हूँ। ठीक है,
मेरे दिल की निगाह से वो दूर हो, कभी खींचे यूं न सबब मुझे, न हूं मंजिलों की तलाश में, नहीं दल जो की है तलब मुझे, न हो लम्हा भर की भी गफलत, अब मुझे क्या पता के हो जाए क्या, न हो लम्हा भर की भी गफलत, अब मुझे क्या पता के हो जाए क्या, कहीं बेखबर रहूं मैं यूं, और करम से देखे वो कब मुझे, कहीं बेखबर रहूं मैं यूं, और करम से देखे वो कब।
ये वाकई इंसान को क्या पता कि अल्लाह पाक का नज़र इल्तिफात किस वक़्त है, और अगर उसका नज़र इल्तिफात किसी वक्त हो और हम इस वक्त गाफिल हो तो हमने बहुत बड़ा चांस मिस कर लिया, बहुत बड़ा चांस मिस कर लिया। हाँ जी, तो ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। तो इस बात की पाने के लिए कि मुझसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए, इंसान अलर्ट रहता है।
मुझे नहुमन जिलों की तलाश में, नहीं दर जो की है तलब मुझे, मेरे सजदे इबादतें उसी का हक, मेरा हक तो उस पे कोई नहीं।
ये मारिफत का बहुत बड़ा नुक्ता है, कि अल्लाह का हमारे ऊपर हक है, हमारा अल्लाह पे कोई हक नहीं। और अगर अल्लाह ताला कभी हमारे हक के बारे में फरमाते हैं तो वो भी उसकी तरफ से है, उसमें हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि वो मेहरबान है, वो अपनी तरफ से हमें बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन ये है कि हमारा हक नहीं है वो। अब इस वजह से ये जब इंसान इबादत करता है और उस पर सिला चाहता है तो वो इस उसूल को तोड़ता है, इस उसूल को तोड़ता है, नतीजतन वो महरूम हो जाता है। लेकिन जो आदमी इबादत इसलिए करता है कि उसका हुक्म है और मैं उसका बंदा हूं, और बंदा तो यही करेगा चाहे मुझे मार भी डाले, फिर भी उसका हुक्म है, मैं तो यही हुक्म, तो उस वजह से वो कभी शैतान के लिए रास्ता नहीं बनता फिर। वरना अगर कोई ये चीज नहीं जानता तो शैतान के लिए बहुत बड़ा रास्ता है, वो जरा भर भी मतलब आपको कोई तकलीफ होगी, देखो ना तू नमाजें पढ़ रहे थे, क्या क्या फायदा, मतलब इस किस्म की बात कर लेगा। और आपको हराम क्या, मेरे ख्याल में कल ही एक आया था इस किस्म का मैसेज आया था जिसमें मुझसे सवाल किया गया था, तो उसको फिर मैंने जवाब यही दिया था, मैंने कहा भाई क्या बात करते हो। हाँ जी, तो ये चीज़ मतलब इस तरह होता है कि अगर हम लोग इस नुक्ता को न जाने तो फिर शैतान के लिए हमने बहुत बड़ा रास्ता छोड़ा हुआ है, किसी वक्त भी इस तरह से पर अटैक कर सकता है और हमारा कमाड़ा कर सकता है, अल्लाह बचाए।
मेरे सजदे इबादते उसे का हक, मेरा हक तो उस पे कोई नहीं, ये करम है उसे का करे कबूल। सुनो खुदे से खी चे वो जब
ये
मुझे
सलूक तय करने में हमेशा नज़र इस पर होनी चाहिए कि मेरा कोई हक नहीं है और मैंने अल्लाह की बंदगी करनी है। अब्दियत तक पहुंचने का जो अमल है ये क्या है, ये सलूक है। अब्दियत तक पहुंचने का जो अमल है वो क्या है, वो सलूक है। एक दफ़ा आप अब्दियत पे पहुंच गए और अल्लाह पाक फिर खींचते तो पता नहीं कितना खींचे, फिर तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, वो तो फिर उसका खींचना है ना, फिर तो उसका कैंच दो कितना कैंच है वो, फिर वो तो अल्लाह ताला की तरफ से, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये मजलूब जो जिसको कहते हैं जज्बे वहबी, जिसको कहते हैं ये इसी चीज़ को कहते हैं, सलूक तय करने के बाद जो जज्ब होता है वो जज्बे वहबी है और उसका कोई हद नहीं है। इस वजह से लोग फिर इतना तरक्की कर लेते हैं जो कि हजारों सालों में भी वो तरक्की अमलन नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह पाक वो करा देते हैं।
ये करम है उसे का करे कबूल। सुनो खुदे से खी चे वो जब मुझे नहुमन्जिलों की तलाश में नहीं दल जो की है तलब मुझे, मुझ पे फजल रब का है ए शबीर, मुझे अहले हक से मिला दिया, मुझ पे फजल रब का है ए शबीर, मुझे अहले हक से मिला दिया। अब खुदा करे, अब खुदा के करम से नसीब हो इन्हीं अहले हक का अदब मुझे।
ये बहुत खूबसूरत इस्तगारा है اسباب کی دنیا کا، جیسے دوسری چیزوں کے اسباب ہوتے ہیں، اس طرح حق تک پہنچنے کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ واسطے بناتے ہیں وہ بھی تو اسباب ہی ہیں، جن کو مال حق کہتے ہیں وہ بھی تو اسباب ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل فرما کر ان اسباب تک پہنچا دیا، ان اسباب تک پہنچا دیا، اہل حق تک پہنچا دیا. اب چونکہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے تو پھر اللہ کے لیے اس کا ادب بھی کرنا، اللہ کے لیے اس کا ادب بھی کرنا ہوتا ہے. اب میں اللہ پاک سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا ادب بھی نصیب فرما دے.
اب خدا کے کرم سے نصیب ہو انہی اہل حق کا ادب.
خشم کردن بادشاہ بر ندیم و شفاعت کردن شفیع مغضوب علیہ را، و از پاچا درخواستن و مقبول شد و رنجیدن مغضوب علیہ کہ چرا شفاعت کرد. ایک بادشاہ کا مصائب پر غصہ کرنا اور بادشاہ کے آگے کسی سفارشی کا سفارش کی درخواست کرنا اور درخواست کا قبول نہ ہونا اور مصائب کا افسوس کرنا کہ کیوں کر سفارش کی. ہاں جی، بادشاہ بر ندی میں خشم کرد خواستہ ازوے براورد و دگرد. ایک بادشاہ اپنے کسی مصائب پر خفا ہوا، سوچا چاہ کے اسے ملیامیٹ کر دوں. ہاں جی، کرد شمشیر از بیرو غلاف تازہ ند بروے جزائے آ خلاف. بادشاہ نے تلوار میاں سے نکالی تاکہ مخالفت کی عوض اسے سزا دے. ہیچ کسرا زہرن تا دم زند یا شفیع شفاعت برتند. اس وقت کسی کو دم مارنے کی تاب نہیں تھی اور نہیں کوئی شخص اس کے فارش پر مادہ تھا. جز عماد الملک نامی اس خواص در شفاعت مصطفیٰ وارانہ خاص. سوائے عماد الملک کے جو خواصین میں سے تھا مثل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی سفارش کے لیے خاص تھا. یعنی بجز بادشاہ کے اس آدمی کا جس کا نام عماد الملک تھا اور اس سفارشی کے لیے مقرر کرتا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز بارگاہ راضی میں دیگر انبیاء کے سوا آپ ہی شفاعت کی مجربین کے لیے مخصوص ہے. ایک حدیث میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق جل شان نے مجھ سے فرمایا، تین چیزیں مانگو، جون سی بھی آپ چاہیں میں قبول کروں گا. میں نے دو چیزیں دنیا میں طلب کی تھی، ایک ایمان لانا ابو جہل یا عمر کا تاکہ اسلام کو تقویت سو قبول ہوئی، ایک دعا اور تھی جو قبول ہوئی، تیسرے کو میں نے قیامت کے دن کے لیے موقوف کیا ہے، وہ شفاعت مومنین ہے اور میں روز جزائے خدا سے درخواست کروں گا انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. بو جہی دو زود در سجدہ فداد در زمان شے تیرا از کفن ہاد. جلدی عماد الملک اٹھا اور فوراً سجدہ میں گھر سکت. بادشاہ نے تلوار کو ہاتھ سے چھوڑ دیا. گفت اگر دیوست من بخشید مش ور بلی سے کرد من پوشید مش. کہا بادشاہ نے، اگر یہ شیطان کی طرف بھی نہ فرمانے تب بھی ہم نے اس کی جان بخشی کی اگرچہ اس نے ہمارے حکم کے خلاف ورزی کی ہے. چونکہ آمد پائے تو اندر میاں راضیم گر کرد مجرم صدیاں. چونکہ تم بیچ میں پڑ گئے ہو، اگر یہ مجرم سو قصور بھی کرے تب بھی میں اس سے رضا راضی ہوں. صد ہزارہ خشم را تھا نم شکست کہ ترا آ فضل و اہم مقدار ہست. لاکھوں میرے غصے تجھے پر قربان بس سبب عزت و وقار کی تو میرے جو تمہاری میرے نظر میں ہے. ان بادشاہ نے مالک کی درخواست پر مجرم کے قصور کو معاف کر دیا اور کہا کہ اگر اس کے ہزاروں بھی جرم ہو تب بھی میں پردہ پوشی کر سکتا ہوں، کیونکہ تمہارے دخل انداز ہونے پر کہ باعث تمہاری میری نظر میں بوجھ فرما برداری اور نمک لالی کی عظمت و جلالت ہے کہ میں سینکڑوں غصوں کو اس کی سبب فنا کر سکتا ہوں لیکن تیرے خوش آمد کو نہیں ٹھکرا سکتا. لاب اترا ہی چنتوانم شکست ذاک لابا تو یقین لابمنست. تمہاری سفارش رد نہیں کر، کیونکہ سفارش میرے نزدیک تمہاری نہیں بلکہ میری سفارش ہے. وہی والی بات ہے نا، کیونکہ میں نے تجھے پکڑ رکھا ہے. اس کے سمجھ میں آ گئی، کیا عجیب انداز سے بات کر سمجھاتے. ہاں جی، گر زمین و آسماں برہم زدے انتقامین بے رومان دے. اگر زمین و آسمان اس کی سفارش کے لیے پلٹ جاتے تب بھی میں اسے انتقام لینے سے باز نہ آتا. درشد ذرا بزرہ لاب اگر او نہ پروے ای زمان استے غسر. اگر جملہ ذات جہاں مل کر اس کی فاش کر تب بھی میرے تلوار سے سر سلامت نہیں لے جا سکتا تھا. بر تو مینا ہی منت اے کریم لے کر شرح عزت تست اے کریم. تم پر میں احسان نہیں رکھ بلکہ تمہاری اس وقت کو ظاہر کرتا ہوں یا جو تمہاری میری نظروں میں ہے. یہ نہ کر دی تو کہ من کر دم یقین. اے صفایت در صفات مادفین. یہ سفارش تم نہیں کی بلکہ خود میں نے کی, کیونکہ تمہارے صفات میرے صفات میں دفن ہے, یعنی تم مجھ میں فنا ہو, اس لیے تمہارے اعمال افعال خود میرے افعال ہے. تو دری مستعملوں نے آتی زاں کی محمولی منی نے حملی. کیونکہ تم اس پر سفارش کی ایک آلہ ہو جس سے کہ میں نے یہ کام لیا اور خود اس کے کرنے والے نہیں ہو. مارا میں تذرم گشتئی خوش پوپشت تندر موج چوں کف ہشتئی. اے مادر تو مارا میں تذرمیت کی نظیر بنا ہوئے ہو اور تو اپنے کف دریا کی طرح کے موج کے حوالے کر دیا ہے. یعنی مارا میں تذرمیتا لیکن اللہ رما, خدا نے فرمایا اے محمد آپ نے تیر نہیں پھینکا جب پھینکنے لگے بلکہ خدا نے تیر پھینکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مخالفین پر غزوہ بدر میں تیر اندازی کی اور مخالف باوجود کثیر افواج و اسلحہ کے کامیاب نہیں اور بتائی دی عز دی, مسلمان باوجود کلیل افواج و اسلحہ کے فتحیاب ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندہ کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا. اس لیے حقیقی افعال عباد کا خالق اللہ جل شانہ ہے, مجازن بندے اپنا افعال کے خالق ہے, کیونکہ خالق و مؤثر ہونے کے اعتبار سے اس طرح منسوب ہے, البتہ باعتبار صدور کے بندوں کی طرف منسوب کرنا درست ہے. اور اس قسم کے نظائر قرآن مجید اور حدیث شریف میں بکثرت ہے. وفائے کلام فیضا قرآن فتب قرآن. یعنی اے اللہ فرما اللہ تعالیٰ فرما اے پیغمبر جب ہم آیت قرآن کو پڑھے تو تم ساتھ ساتھ پڑھو. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اسلام کی قرت کو اپنی طرف منسوخ فرمایا. مولانا فرماتے کہ سالک کو بھی ایسے مقام سے گزرنا پڑتا ہے جب سالک کی سیر عروج کی طرف ختم, اس کا وجود فانی ہو جاتا ہے, پھر وہ بشریت کی طرف نزول کرتا ہے اور اپنی ذات کا جلوہ آئینہ حق پر دیکھتا ہے, اور یہ عرفان کا سب سے بلند مقام ہوتا ہے. اب وہ اپنی ذات کو معدوم اور ذات حق کے ساتھ موجود دیکھتا ہے اور اپنے تمام افعال و صفات کو حق کے ساتھ منسوب پاتا ہے. کیا بات ہے. مثلا ایک شخص ہے, وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے, نظر آتے نظر آتے نظر آتے, لیکن کسی طریقے سے اس کے سامنے آئی نہ ہے, تو اس سے وہ اپنا آپ اس کو پھر نظر نہ آئے. ہاں جی, اور ادھر آئینے میں اس کو نظر آئے. ہاں جی, اور آئینہ کو کہنے لے کے میں ہوں. سمجھ میں آ گئی نا بات. تو ایسی صورت میں جب انسان فانی ہو جاتا ہے اللہ میں, اپنے اللہ یعنی اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے, اپنی نفی کر لیتا ہے, فنا کرتے 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 بالکل نظروں سے فنا ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے ساتھ وہ باقی ہو جاتا ہے, یعنی اللہ جل شانہ کی شان سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے, تو اللہ جل شانہ کی شان سے وہ ظاہر ہو جائے. ایسی صورت میں چونکہ وہ اپنے آپ سے چپ ہوا ہے, ہاں جی, یعنی وہ اس لحاظ سے, لیکن اس آئینے کے لحاظ سے وہ ظاہر ہے, لہذا آئینے کی طرف اپنا اشارہ کرنا یہ گویا کہ اس کیفیت کا اشارہ ہے, وہ اصل بات نہیں ہے, اس کیفیت کا اشارہ ہے. یعنی اس میں صرف اس کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ خود اپنے آپ میں نہیں ہے, یہ خود اپنے آپ میں نہیں ہے بلکہ اس کیفیت میں ہے, نتیجہ تن وہ کیفیت بول رہا ہے یہ نہیں بول رہا. سمجھ میں آ گئی نا بات. وہ کیفیت بول رہا ہے یہ نہیں بول رہا. تو اس وجہ سے جو اس چیز کو جانتا ہے وہ اس کو مجرم نہیں مانتا بلکہ معذور سمجھتا ہے. ہاں, جو نہیں جانتا اس چیز کو تو کہتے یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے ایک واقعہ حضرت تانویر حسین نے بیان فرمایا. बड़ा खूबसूरत वाक्य। हजरत ने फरमाया कि एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक औरत आई और अपने बच्चे को पेश किया कि आप इनकी आंखों पे हाथ फेरे ताकि बीना हो जाए, मादरजात अंधा है। उस वक्त उसको उसके ऊपर तौहीद का गलबा था और अपनी नफी थी, तो कहने लगा कि मैं क्या मूसा हूं, क्या मैं ऐसा हूं कि मैं ही करूंगा, इन अल्लाह पाक ने उनको तो मौजूद दिया था, तो मैं तो वो नहीं हूं। वो औरत रोती हुई चली गई। इतने में इनको इल्हाम हुआ, इल्हाम चूंकि अल्लाह पाक की तरफ से होता है तो इल्हाम के साथ वलीउल्लाह को बहुत मोहब्बत होती है, क्योंकि उसके जरिए से वो अल्लाह ताला तक पहुंचता है। तो इल्हाम ये हुआ, मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं करता हूं, मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं करता हूं। अब अगर हम जैसे लोग हो तो हम तो इस सवाल नहीं पैदा हो सके कह सकें, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर है और हमारी क्या हैसियत है उनके मुकाबले में, तो सख्त दर्जे की बेदबी होगी। लेकिन वो उस वक्त अपने लिहाज से थोड़ा बोल रहे थे, वो तो जो इल्हाम था वो बोल रहे थे। तो वो उस औरत के पीछे भागे और भागते भागते मुसलसल कह रहे थे, मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं करता हूँ, मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं करता हूँ, मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं करता हूँ। उनके चेहरे पे, बच्चे के चेहरे पे हाथ फेरने लगे, वो ठीक हो गया। अब उनके मुरीदीन शागिर्द मौजूद थे, वो कहते हजरत को क्या हुआ, ये क्या कहने लगे, कभी इस तरह बात तो नहीं की हजरत ने। तो उनने हजरत से पूछा, हजरत ये क्या फरमा रहे आप। उन्होंने कहा क्या बात है, वो जो होश में आ गए, उस कैफियत से बाहर निकला है, होश में आए, कहते क्या बात है, कहते आप ये कह रहे हैं कि मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं करता हूं, तो ये तो मैं नहीं कह रहा था, ये तो मेरी कैफियत कह रही थी, क्योंकि उस वक्त मुझे इल्हाम हुआ था जिसमें यह था कि मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं कहता, तुम्हें अल्फाज इल्हाम के बयान कर रहा था, मैं वो कह तो नहीं थोड़ा रहा था, मैं बस सिर्फ अल्फाज बयान कर रहा था क्योंकि मुझे इसमें मजा आ रहा था, मूसा कौन ईसा कौन ये तो मैं करता हूं। अब जिनको ये पता नहीं था वो हैरान हो रहे थे, और जिसको ये पता होगा तो उसको कोई हैरत नहीं होगी, कहेंगे तो खुद नहीं बोल रहा, ये तो जो इसके जुबान पे डाल दिया गया वही बोल रहा है। हाँ जी, चले मैं जरा थोड़ा सा और इसको वाजे कर दूं। ये बताएं, किसी को मारना कैसा है, जुर्म है नहीं, लेकिन इज़राइल सलाम और उसके जो लश्कर हैं वो कितने लोगों को मार रहे हैं, तो क्या जुर्म है? या जल्लाद को जब मारने का हुक्म होता है तो क्या उसको सजा होती, क्योंकि उस वक्त वो खुद तो कर नहीं रहा होता, बल्कि उसको हुक्म ये होता है उसके मुताबिक कर रहा होता है, तो लिहाजा मुजरिम नहीं होता। तो इस तरीके से जब कैफियत किसी ऊपर तारी कर दी जाती है तो वो मुजरिम नहीं होता, माजूर होता है। माजूर क्यों होता है, क्योंकि शरीयत के सब मुकल्लफ है, तो जब तक वो होश में है वो ऐसा नहीं कर सकता, होश में इंसान शरीयत पर चलेगा, और जब होश से मदहोश हो जाए तो वो माजूर है, यानी उसको मतलब ये है कि जुर्म नहीं किया, क्योंकि यार उसको पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, वो मदहोश है, जैसे बेहोशी में कोई बात कर रहा हो, तो होश में कह नहीं सकता, मदहोशी में माजूर है। लेकिन जो मदहोशी में काम कर रहा है उसको को जो होश वाला तो नहीं कर सकता ना, वो करेगा तो जुर्म बन जाएगा। तो लिहाजा ऐसे शख्स की जो मदहोशी में काम कर रहा है वो होश वाले नहीं कर सकता, उसकी नकल करेगा जिंदगी को जाएगा। कोई अब इब्न मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह की नकल करेगा और कहेगा अनल हक, तो ये जिंदगी को जाएगा, क्योंकि उसको कैफियत हासिल नहीं है। वो तो होश में कह रहा है, जबकि इब्न मंसूर हलाज रहमत होश में नहीं कह रहा था। तो बस यही बात होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी इस कैफियत के भी इनकार कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ये कि उसको असल समझकर खुद भी इस तरह कहने लगते हैं। ये शायर लोग होते हैं, इसमें बहुत मंसते हैं शायर लोग जो होते हैं, ये बहुत मंसते हैं, और इस किस्म की बातें करके बाद लोग काफिर भी हो जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, यानी इल्म की नकमी की वजह से। मुझे किसी ने, मेरे ख्याल में अभी है, शायद मेरे पास भी होगा, एक मुफ्ती साहब ने मुझे भेजा एक सवाल। वो सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु, हज़रत ये एक शेर है, नाहक हम मजबूरों पे तोहमत है मुख्तारी की, नाहक हम मजबूरों पे तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं जो आप करें हमको बस बदनाम किया। आगे 15 अल्फाज के दो जुमले, अगर तकदीर की तारीफ चंद मुख्तसर और जाम जुमले हो तो फिर समझ आ जाएगी। हज़रत शेर का मुनासिब जवाब अता फरमा दें। मैंने जवाब लिखा कि शायरों की बात इसमें मुस्तरद ही नहीं, शायरों की बात इसमें मुस्तनद ही नहीं, ये शायर जबरी अकीदे कहा मैंने। जबरी अकीदे तो बातिल है, हाँ जी, और इसमें बेअदबी भी पाई जाती है। अबस की नस्बत अल्लाह ताला की तरफ करना सख्त तरीन बेअदबी है, कि अल्लाह ताला की किसी बात को अबस कह दें तो और बेअदबी किसको कहते हैं, हाँ जी। अल्लाह ताला हकीम है और हकीम का कोई काम भी अबस नहीं होता, अल्लाह ताला हकीम है और हकीम का कोई काम भी अबस नहीं होता। माँ लहुम भी मिन इल्म वला लिअबाहिम कबरत करे बतन तखरुज मिन अफ़वाहिम, हाँ जी। तो मतलब यह है कि ये असल में बहुत ही अपने आप को ख़राब कर देते हैं, हाँ जी, ये जो शायर लोग होते हैं, असल में इनको असल इलम तो होता नहीं, बस तो कबंदी कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हम बड़े शायर हो गए और इसमें आज़ाद हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा इम्तिहान है। हज़रत मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नात कहना ये तलवार के ऊपर चलना है, नात कहना जो है ये तलवार के ऊपर चलना है। क्यों, वजह क्या है कि आप सब का मुकाम इतना ऊंचा है कि ज़रा भर भी उसमें मजीद इजाफा करोगे तो इलाही सिफात में शामिल कर लोगे तो तबाही है, और कम करोगे तो भी तबाही है। तो उस तरह टिक टिक कहना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो यही बात थी, मैं ना तो नहीं कह सकता था, मेरे साथ ये मुश्किल बात थी। तो मुझसे हमारे एक दोस्त है, गाड़ी में जा रहा था, मुझसे कहा कि शबीर साहब आप हम्द कहते हैं नात नहीं कहते, क्या वजह है? मैंने कहा मैं नात शरीफ नहीं कह सकता, मुझे खतरा है कि कहीं मैं अपना कोई काम खराब ना कर दूं, हाँ जी, इस वजह से जो है ना, मतलब मैं नात नहीं कह सकता। पता नहीं अल्लाह जल्ला शानों को शायद वो बात पसंद आई, हाँ जी। अभी उसके साथ मैंने बात की ही थी कि नात शरीफ शुरू हो गया, अल्फाज आने शुरू हो गए, और थोड़ी देर में नात पूरी मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मैंने उसको सुना भी ली, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र वो नात कबूल भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, हाँ जी। तो वो असल बात क्या है, बात यह है कि इंसान को डर डर के काम करना चाहिए। कहते डरते डरते काम करो, काम करते करते डरा करो, इसी में हिफाजत है। वो जो दलेर होकर काम करते हैं ना भाई, दलेरी किसी और जगह करो, ये जगह दलेरी की नहीं है, यहाँ तो डरते डरते काम करो। लगजश बहुत खतरनाक है इसमें, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ है वो सारा उड़ जाए, तो वो नाथ ये था। ठीक है,
कनेक्टेड।
अपने आका की तारीफ कैसे करूं, इसके करने को मेरी जुबां ही नहीं। अपने आका की तारीफ कैसे करूं, इसके करने को मेरी जुबां ही नहीं। जिस किसी दिल में उनकी महाबत न हो, एक पत्थर ही है उसमें जा ही नहीं। जिस किसी दिल में उनकी महाबत न हो, एक पत्थर ही है उसमें जा ही नहीं। वो है महबूबे रब्बे करीम मुस्तफा, वो के मजहर हिदायत के हैं मुजतबा। तो मेरी अब जुबा पर हो सल्ले आला, तो मेरी अब जुबा पर हो सल्ले आला। अब दुरूदो सलाम मैं हमेशा पढ़ूं, दिल से मैं हर जगह सिर्फ यहाँ ही नहीं। अब दुरूदो सलाम मैं हमेशा पढ़ूं, दिल से मैं हर जगह सिर्फ यहाँ ही नहीं। है सरापा वो रहमत हमारे लिए, उनका रास्ता हिदायत हमारे लिए, मंबाए फैज़ो हिकमत हमारे लिए, मंबाए फैज़ो हिकमत हमारे लिए। जो कभी भी जुदा हो गया उनसे तो उसके बचने का कोई मकान ही नहीं। जो कभी भी जुदा हो गया उनसे तो उसके बचने का कोई मकान ही नहीं। अब भी मिलता है उनकी नजर के तुफैल, उनकी तालीम दी पुर असर के तुफैल, है बशर जिंदा खैरुल बशर के तुफैल, है बशर जिंदा खैरुल बशर के तुफैल। नाम लेवा अगर ना रहे उन
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या करीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व रसूलुल्लाह व बरकातुहु
का तो फिर खुदा की कसम ये जहां ही नहीं, नाम लेवा अगर ना रहे उनका तो फिर खुदा की कसम ये जहां ही नहीं। पढ़ के सीरत मैं उनकी ही इंसान बनूं, उनके पीछे रहूं मर्द मैदान बनूं, उनको मैं छोड़ कर कैसे तेरा बनूं, उनको मैं छोड़ कर कैसे तेरा बनूं। गर मोहब्बत न हासिल हो उनकी शबीर, तो कहूँ यूं के फिर तो ईमान ही नहीं। गर मोहब्बत न हासिल हो उनकी शबीर, तो कहूँ यूं के फिर तो ईमान ही नहीं। अपने आका की तारीफ कैसे करूं, इसके करने को मेरी जुबान ही नहीं।
दो शेर बाकी है। लाशुदी पहलो ए अल्लाह खानगीर, ए अजब के हम अमीरी हम अमीर। तुम अपने आप को फना करके अल्लाह के पनाह में आ चुके हो, ताज्जुब है कि तुम अमीर भी और अमीर भी हो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई महबूद सिवाय अल्लाह के। इंसानी फलाह निजात और खुदा की रजा खुशनदी का सिर्फ एक ज़रिया है जो ला की नफ़ी और अल्लाह के इस बात में मुजमर है। कायनात में हर एक चीज़ का खालिक और रब सिवाय वाहदुल्लाह शरीक कोई नहीं है, यानी कायनात में से कोई भी इसका मुस्तहिक नहीं है इल्लल्लाह सिवाय उसी के। वही उस जहाँ का खालिक व माबूद है। सारी ताकतों की नफ़ी और सिर्फ एक ही ताकत का इस्बात किया जाए। अम्बिया इकराम की तालीमात का लुब लबाब यही था। उन्होंने अपनी ज़ात को खुदा की ज़ात और सिफात में फ़ना कर दिया था। इस फनाइत के बाद ज़ात वाहदु के असीर थे और कायनात के अमीर थे। हाँ जी, मतलब यह है कि अल्लाह के बन जाओ तो अल्लाह की सारी चीज़ें तुम्हारी। अल्लाह इकबाल नहीं थी जिसको बताया था ना कि मोहम्मद से वफात उन्हें तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ें क्या लोह कलम तेरे। हर एक ज़र्रे कायनात बंदे बेदाम बहर बर हजर दरिंद परिंद और शम्स कमर सब यानी आँच दादी तू न दादी शाहदाद उस बस अल्लाह आलम बिरशाद। तूने जो कुछ दिया वो तूने नहीं दिया बल्कि शाह ने दिया है, क्योंकि वही मुकदम है, खुदा ही बेहतर जानता है। यानी ए मादम तूने जो कुछ मातू बहरे के साथ सलूक किया ये तुमने नहीं किया बल्कि खुद हमने किया है, क्योंकि अब तुम नहीं रहे बल्कि अब जो कुछ है वो हम ही है। यानी तुम्हारा सारा कुछ फैसला हमारा ही है। हाँ जी, ये वाली बात है। यानी अगर इंसान मतलब इस चीज़ को जान ले तो फिर उसको कोई परेशानी होगी, वो जो है ना मतलब ये कि महज एक आला बन जाएगा। अब ज़रा कहेंगे भाई ये तो शायरी है, मतलब शायरी की क्या बात है, मतलब छोड़ो यार इसमें मतलब शायरी मुबालिगा है। तो चलो हदीस शरीफ सुन लो। हदीस शरीफ में आप सब ने फरमाया सबसे आला कुरब वो तो फ़राइज़ का है। सबसे आला कुरब वो तो फ़राइज़ का है। फिर नवाफिल के ज़रिए से इंसान कुरब हासिल करता रहता है, तो करता रहते करता रहते करते हत्ता कि अल्लाह ताला फरमाते मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे बोलता है। अब बताओ ये क्या चीज़ है। हाँ जी, ये तो हदीस शरीफ है ना। हाँ जी, यानी एक इंसान जब अल्लाह का बन जाता है तो अल्लाह पाक इसको फिर अपना आला बना लेता है। अल्लाह ताला इसको फिर आला बना लेता है और आला होने की वजह से वो जो कुछ करते हैं अल्लाह ताला उसकी नस्बत अपनी तरफ करता है। क्योंकि खुद फना हो चुका होता है, उसका इरादा फना हो चुका होता है। हाँ जी, गुफ्ते गुफ्ते अल्लाह बुत गर्चे अस हल्कों में अब्दुल्ला बुत, उसका कहना जो है वो कुछ किसी और का नहीं होता, वो अल्लाह की तरफ से होता है, अगरचे वो अल्लाह के बंदे की ज़ुबान से निकल रहा होता है, अगरचे वो अल्लाह के बंदे की ज़ुबान से, लेकिन वो होता अल्लाह तआला की तरफ से। तो ये जो इंसान अपने आप को फना करते हैं अल्लाह पाक की मोहब्बत में, तो ये मैं आपको याद दिला दूँ, अल्लाह पाक इतना गैरती है और अल्लाह पाक इतना फयाज़ है, अल्लाह पाक इतना जवाद है, अल्लाह पाक इतना देते इतना मेहरबान है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी हम अपनी सी जितनी छोटी सी कायनात अपनी फना कर दे, यानी जो हम हैं, तो अल्लाह पाक सारी कायनात हमारे वाले कर दें। हाँ जी, मतलब वो मलहरूम रहमतुल्लाह ने ही तो फरमाया था कि कोई कदर जाने तो उसकी कदर से कदर जाने, कि एक फूल दे दो उसके लिए तो पूरा गुलजार हवाले कर दे, पूरा गुलजार हवाले कर दे, उसके लिए क्या है। हाँ जी, तो यही असल में बुनियादी बात है। एक साहब थे, उनको अल्लाह पाक ने एक मुकाम दिया था, फिर उनके ऊपर कुछ तकलीफें आई, उस तकलीफों में उसकी ज़ुबान से ये बात निकल गई कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप ससम की तरफ से बात आई, वो तूने नहीं किया था, वो तूने नहीं किया था, मतलब ये कि तू समझते कि तूने किया, वो तूने नहीं किया था, लिहाजा को क्यों क्लेम कर रहे हो। तो क्लेम करना बहुत खतरनाक है, क्लेम करना बहुत खतरनाक है, क्लेम न करना सबसे बड़ी अकलमंदी है। जब तूने क्लेम कर लिया तो पंस गए, जब तूने क्लेम कर लिया तो पंस गए, अपने आपको पंसा दिया, फिर कर दो, दे दो हिसाब, फिर करो, फिर ठीक है, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, फिर देखो क्या कहाँ तुम जीतते हो। आज और अगर सरेंडर कर लिया, हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखते हैं कि क्यामत का मंजर है। हाँ जी, और अल्लाह जल्ला शानो एक आलिम, वो आलिम थे, उसको बोला क्या तू आलिम हो, सब मतलब ये है कि मुंह से निकल गया कि हाँ मैं आलिम हूँ, लोग मुझे आलिम सा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा फिर जलालैन में इम्तिहान दो, जलालैन में, जलालैन एक किताब है जो मदारिस में पढ़ाई जाती है, इसमें इम्तिहान दो। अब डर गए, अल्लाह अब मैं कैसे इम्तिहान दूँ, अल्लाह अगर इम्तिहान लेना चाहे तो फिर कौन पास हो सकता है। बहुत डर गए, दूर देखा तो आप सज़म तशरीफ़ फरमाए, तो रिंगते 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 आप सज़म के पास पहुंच गए। या रसूल अल्लाह मैं पंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, अब अगर अल्लाह पाक मुझसे इम्तिहान लेना चाहे तो मैं किस तरह इम्तिहान दूंगा, अल्लाह पाक को तो कोई इम्तिहान नहीं दे सकता। तो आप सज़म ने फरमाया तू कह देना कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तू कह देना कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो बस बचत हो जाएगी। तो जिस वक्त ने अल्लाह पाक ने इम्तिहान लेना चाहा तो उन्होंने कहा या अल्लाह मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो अच्छा चलो एक दिन की कैद, यानी तखफीफ हो गई। तो मतलब मेरे ये है कि यानी ये जो बात है कि जो इंसान समझते हैं मैं आलिम हूँ तो पंस गया, जो समझे कि मैंने कुछ कर लिया तो पंस गया। बस जिसने मतलब जितना वो मौजूद है ना उसी से गड़बड़े, उसी ने नुकसान पहुंचाया, और जिसने अपने आप को वाकई अल्लाह की मोहब्बत में फना कर दिया तो माशाल्लाह बाकी हो गया, उसका काम बन गया। यही तसव्वुफ है, इसी में सारे मसले होते हैं। اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا کریم, تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ. لا إله إلا هو, 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 إله إلا هو, لا إله إلا هو, إله إلا هو, لا 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 إله إلا هو. حق 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 اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وتوب علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.